जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नंद लाला, कृष्णा, मुरारी, अपनी बंसरी बजा दो। जब कभी हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं ना, सबसे पहले उनका बाल स्वरूप सामने आता है, हाथ में बांसुरी को लिए हुए। पीताम्बर ओढ़े हुए हैं मेरे काना, सर पर मोर का मुकुट है, विजयंती माला धारण की, कुस्तुम्बी नाम का मणि छाती में लटक रहा है, हाथ में कंकन है। लेकिन बांसुरी की बात अलग है। जब वो नाचते हैं ना, नन्हे नन्हे लाल मेरे, बस उनको देखते ही रह जाते हैं। आंखें थकती नहीं है, आंखें रुकती नहीं है, आंखों से अश्रु की धारा गंगा जमुना की तरह बहने लगती है। इतना मनमोहक रूप, ऐसा सौंदर्य आप कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण का मतलब ही यही होता है जो आपको आकर्षित कर रहे। वो जब बांसुरी बजाते हैं, मधुर मधुर राग निकलते हैं, वाह। आपको पता है, कान्हा को देख के गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती थी। जो आनंद उनको मिलता था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, मेरे बाल श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए हुए नाच रहे हैं सांप के फन के ऊपर। कहते हैं नाग नथैया, नाग के फन के ऊपर नाच रहे थे। आप जानते क्या हुआ था? कहा जाता है, श्रीमद् भागवत में कथा दी गई है, एक बार भगवान कृष्ण के मित्रगण खेल रहे थे। कोई गेंद थी या बॉल थी, वो जाके तालाब में गिर गई। तालाब था या यमुना नदी थी, पानी गहरा था। ये भी कहा जाता है कि उसका पानी जो था वो जहरीला हो गया था। वहां पर एक नाग वास कर रहा था, नाग के कई सर थे, विष उगलता था, कई गाय मर गई, कई पशु मर गए, कई पक्षी मर गए। यू समझे कि पानी दूषित हो गया था, पोल्यूट हो गया था, जीव जंतु मरने लग गए। जब बच्चों की गेंद वहां चली गई तो बाल श्री कृष्ण बोलते मैं जाके गेंद लेके आता हूं। सबने मना किया, इससे पहले कि कुछ कहते भगवान श्री कृष्ण पानी में उतर गए। काफी देर तक बाहर नहीं आए, बाहर सारे मित्रगण खड़े हुए थे, सब चिल्लाने लग गए, रोने लग गए। कहा जाता है वहां की गैया भी देख देख के आंसू बहा रही थी। सारे मित्रगण, सारे पक्षु पक्षी जीव जंतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे राधे देव, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हमारे सर्व कर्मों का फल मेरे कान्हा को दे दो, उनके जीवन रक्षा करो, उनको जैसे भी बाहर निकालो। सब लोग इकट्ठे होके एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि कोई जानता नहीं है दूसरा क्या बोल रहा है, लेकिन मन में सबके अंदर एक ही भाव था कि हमारे श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण जो अभी पानी में उतरे हैं, वह बाहर ठीक ठाक आ जाए। कहते हैं बाल कृष्ण अंदर गए, वह नाग था, नाग के साथ युद्ध होने लग गया। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लग गया। कालिया नाग जैसे जैसे भगवान कृष्ण को डसता, वह विष अमृत बन जाता। कन्हैया ने एक हाथ में फन को पकड़ा, दूसरे में पूंछ, और फिर फन पर आरूढ़ हो गए। दूसरी ओर सारे बालक बाहर खड़े हुए घबरा रहे थे, भयभीत हो रहे थे। वहां भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाते जा रहे थे। कन्हैया नाग के सर पे खड़े होके उनके सर को नीचे झुकाते जा रहे थे। कालिया नाग मरण अवस्था में पहुंच गया। कहते हैं नाग की पत्नियां शरण में आगे भगवान कृष्ण के प्रार्थना करने लग गई। भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों की प्रार्थना से एकदम। भगवान ने कहा कालिया तू यहां पर रहकर इस जल को प्रदूषित क्यों कर रहा है, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, यहां से तुम दूर चले जाओ। ना बोला प्रभु मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहले ये अगर मैं बाहर निकलूंगा मेरे को गरुड़ मार देगा, उसका मुझे डर, दूसरा मैं कहां जाऊं, तीसरा सारी सृष्टि की रचना आपने करी है, जो अच्छा है या बुरा है सब आपने बनाया है, मेरे को आपने नाग बनाया है, नाग की ये प्रवृत्ति है उसके अंदर विष होता है तो वो भी तो आपने बनाया, फिर अच्छा बुरा कैसे हुआ। भगवान बोले मैं तुम्हारे सर पे खड़ा हूं, तुम्हारे सर पर मेरे पद चिन्ह बन गए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता, दूसरा यहां से तुम रमणीक द्वीप क्यों चले जाओ, तीसरा तुम्हारे पास ये विष है दसने की शक्ति है लेकिन लोगों को मारने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए है। बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर यू किल द पावर और द पावरफुल रिजल्ट, या तो आप पावर को मारे शक्ति को मारे या शक्ति का जो फल मिलता है उसको मारे। भगवान कृष्ण ने नाग की प्रवृत्ति को बदल दिया कि वह अपने विष से यहां किसी को डसेगा नहीं। कई बार लोगों ने भगवान बाबा से पूछा स्वामी राम अवतार में आपने रावण कुंभकर्ण को मारा, भगवान कृष्ण अवतार में आपने कर्ण शिशुपाल को मारा, क्या इस युग में आप राक्षसों का वध नहीं करेंगे। भगवान बोले नहीं, इस युग में राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वास कर रहा है, मैं किस किस को मारूंगा, इसलिए इस युग में मैं प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तित करूंगा, आई विल ट्रांसफॉर्म देम विद द वेपन ऑफ लव, प्रेम का अस्त्र लेके आए भगवान श्री सत्य साई बाबा, प्रेम के द्वारा प्रेम के अस्त्र से मैं सबके अंदर परिवर्तन लेके आऊंगा। अब प्रश्न ये है, नाग ये क्या है, सांप कहा जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी एक सांप की तरह है, रीढ़ की हड्डी के बेस में नीचे जहां से आरंभ होती है उसे कहा जाता है मूलाधारा चक्र, वहां पर सारी शक्ति कुंडलिनी मार के बैठी होती है, जिस प्रकार से सांप गोल गोल घूम के कुंडलिनी मार के बैठता है उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी में सारी शक्ति अर्जित है। अगर हम उस शक्ति को जागृत करते हैं शक्ति धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है रास्ते में कई सेंटर्स आते हैं केंद्र आते हैं उन्हें कहते हैं शक्ति केंद्र या चक्रज, चक्र बोलते हैं, धीरे धीरे आपकी शक्ति प्रत्येक चक्र में आके ज्यादा प्रभावित हो जाती है, ज्यादा प्रभावशील हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, लेकिन आप अपनी शक्ति को और ऊंचा उठाइए। वो शक्ति जब आपके सर तक पहुंच जाती है जहां पर अखिला चक्र है, सातवां चक्र कहते हैं, सारा चक्र वहां चलने के बाद आपको मुक्ति का द्वार दिखना आरंभ हो जाता है. ये एक क्रिया है, योग क्रिया. लेकिन भागवतम में कहा गया है ये कालिया नाग पिछले जन्म में एक ऋषि था, वीरशिरा नाम था. उनको श्राप लगा, वह इस जन्म में नाग बनकर आया. लेकिन क्योंकि उसने कई जन्मों जन्मांतरों तक इतनी तपस्या करी थी, उसके फल के कारण उसको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए. भगवान कृष्ण ने अपने चरणों की छाप उनके सर पे छोड़ी. कहने का तात्पर्य है, जब कभी आप भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, भक्ति कभी खराब नहीं जाती, वह अर्जित होती रहती है, वह जमा होती जाती है. दूसरी बात, सांप के फन में जहर है. इस सांप के, कालिया नाग के कई फन थे, ये जहर क्या है विचार कीजिएगा. कभी आपने विचार किया, किसी को अपने देह पर अहंकार होता है, किसी को अपने ज्ञान पर अहंकार होता है, किसी को अपने रूप पर अहंकार होता है, किसी को अपनी संपत्ति पर, किसी को विद्या पर, किसी को बल पर. ये सारे अहंकार हैं. जब आदमी के अंदर अहंकार होता है, वह परमात्मा के रास्ते पे नहीं जा पाता. भगवान श्री कृष्ण ने जब सांप के फन को ऊपर चढ़ के उसके जहर को अमृत बनाया, कहने का तात्पर्य है, अगर आपके भीतर कोई अहंकार है या कोई इच्छा है. कहा जाता है हमारे भीतर 6 प्रकार के अहंकार हैं, या उनको अन्य शब्दों में कहा जाता है षड शत्रु. 6 शत्रु हैं अहंकार, नहीं शत्रु हैं, षड शत्रु, 6 इनर एनिमीज, काम क्रोध मोह मद लोभ मत्सर. काम है लस्ट डिजायर, क्रोध है एंगर, ग्रीड, ग्रीड का अर्थ है लालच, मोह का अर्थ है अटैचमेंट, मद का अर्थ है ईगो, मत्सर का अर्थ है जेलसी. ये 6 शत्रु हमारे भीतर हैं. जब तक ये 6 शत्रु अंदर रहेंगे, ये हमारा ध्यान भक्ति की ओर नहीं जाने देंगे. खासकर हमारी काम इच्छाएं, इससे सबसे पहले शब्द आता है काम. जब तक आपके अंदर थोड़ा भी काम है, थोड़ी भी इच्छा है, थोड़ी भी डिजायर है, वो बार बार पनपेगी. जब भगवान कृष्ण ने सांप के फन को मारा, वो घायल हो गया, उसे चोट लगी, थोड़ी देर में ठीक होकर वापस आ गया. उसी प्रकार से जो आपके अंदर कोई काम वासना है, आप उसको मारते हैं, उसका दमन करते हैं, उसको दबोचते हैं, उसको नीचा करते हैं, कुछ समय के बाद वह शक्ति अर्जित करके फिर वापस आ जाती है. इसी प्रकार हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, वह दबती हैं, लेकिन बाद में उभर के आ जाती हैं. 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के फिर आ जाती हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इन इच्छाओं को, इन शत्रुओं को अपने भीतर से बाहर निकालने का प्रयास करना है. लेकिन इसमें आपकी उम्र क्या, कई जन्म लग जाएंगे. इसलिए कहा गया भगवान कृष्ण ने नाग के सर पर अपने पद के चिन्हों को छोड़ा. हालांकि नाग के अंदर पॉइजन है, नाग के अंदर जहर है, जहरीला है, लेकिन सर पे भगवान कृष्ण के पद के चिन्ह है. कहने का तात्पर्य, भगवान को अपने सर पर बिठाइए. हम क्या करते हैं, हम भगवान की चरम पादुका घर में रखते हैं, चरम पादुकाएं की पूजा करते हैं. खासकर गुरु पूर्णिमा के समय बहुत से लोग पादुका पूजा करते हैं, रोज मासा टिकते चरण पादुका में. आपने कई मंदिरों में देखा होगा, कहते हैं ये भगवान शिरडी बाबा का चरण है, भगवान सत्य साई बाबा का चरण है, या भगवान विष्णु का चरण है, हनुमान जी का चरण है. तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सिंबॉलिक है. कहने का तात्पर्य, ये चरण का मतलब है उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, खाली माथा टेकना नहीं, उस पर चलना. जब आप उस रास्ते पे चलते हैं, आपके रास्ते में से धीरे धीरे शत्रु हट जाते हैं. कालिया नाग इंद्रियाध्यास है, जो आपकी इंद्रियां है वो कालिया नाग है। यमुना कहता है यहां पर भक्ति, भक्ति में इंद्रियाध्यास आए तो शुद्ध भक्ति नहीं आ पाती। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु हैं। हम सारे संसार को भोगना चाहते हैं, संसार के सारे वस्तुओं का मजा लेना चाहते हैं, हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, और भक्ति के साथ वो नहीं हो पाता कि भक्ति ऊपर होनी चाहिए। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वालों को भी काली नाग कहा जाता है, या भक्ति के बहाने इंद्रियों को जो बहला दे उसको भी काली नाग कहते हैं। ना केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करना होगा, तब जाके भक्ति सिद्ध होगी। आप अपने शरीर के, आपके आचरण से आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं आपके आंखों के सामने कई लीलाएं चलने लगती हैं। आपके मन की जो वृत्तियां हैं, मन के अंदर जो डिजायर्स हैं, मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो प्रबल इच्छाएं हैं, जो इंटेंस डिजायर है, वो पनपने लगती हैं, वो सपने में आने लग जाती हैं। जो चीजें आप बाहर संसार में नहीं कर पा रहे वो आप सपने में कर रहे हैं। अगर हमें अपनी भक्ति शुद्ध करनी है, हमें परमात्मा को अपने सर पर रखना होगा, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। सेवा करना जीवन में आसान है, संसार के सुख को मन से त्यागना बहुत कठिन है। विचार कीजिएगा, भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया था, केवल कालिया नाग का दमन किया था, अर्थात उसको नियंत्रित किया था। भगवान ने कालिया नाग को कंट्रोल किया था, बाकी राक्षसों को मार दिया, कालिया को क्यों नहीं मारा, कंट्रोल किया। कहने का तात्पर्य है आपके अंदर इंद्रियां, इंद्रियों का नाश नहीं हो सकता। आपकी आंखें देखती हैं, क्या आपकी आंखें फोड़ दी जाएं? आपके कान सुनते हैं, सुनते हैं, आपके कान खराब कर दिए जाएं? इंद्रियों का नाश नहीं होता, इंद्रियों का दमन किया जाता है, उन्हें अपने विवेक से वश में किया जाता है। इंद्रियों को सत्संग में लगाओगे, अच्छे रास्ते पर लगाओगे, जहां भक्ति रस की प्राप्ति होगी, वो अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़ निचोड़ के बाहर निकालना होगा। कालिया नाग को भगवान ने विष रहित, विष से निकालने के बाद उसे रमणी द्वीप पे भेज दिया था। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे तो भक्ति रस में अपने आप लीन हो जाओगे। भोग से इंद्रियों का क्षय हो जाता है और भक्ति से पोषण होता है। विचार कीजिएगा, अगर आपकी वाणी कीर्तन करेगी, मन श्रवण करेगा, आंखें श्रवण करेंगी, तभी आपका जप और तप सफल होगा। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा हुआ होगा, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। विचार कीजिएगा, दूसरी बात कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन, उनका पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, अर्थात अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा और उनका पुत्र परीक्षित, वह एक राजा था। उनको श्राप मिला था कि वह 7 दिन के बाद सांप के काटने से मारे जाएंगे। जब उन्हें पता लगा मुझे श्राप मिला है, मैं 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, तो अपने जीवन को मुक्ति के द्वार तले जाने के लिए उन्होंने ऋषि से सहायता मांगी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे। कहा जाता है उनके पुत्र ने वहां पर कोई यज्ञ आरंभ करवाया जिससे संसार के सारे सांप नष्ट हो जाएं। लेकिन सावन का महीना यानी श्रावण मास की पंचम तिथि थी जिस दिन नाग ने राजा परीक्षित को डसा और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उस दिन को नाग पंचमी कहते हैं। वहां से नाग पंचमी आरंभ होती है। इस दिन को शुद्ध दिन कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए, ये कहा जाता है वह मुक्त हो गए, वह परम धाम चले गए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं आपको भक्ति का रास्ता लेना होगा, यही नागपंचमी का एक संदेश है कि अपने भीतर से जहर को बाहर निकालो, जहर पर दमन करो, कंट्रोल करो इंद्रियों के ऊपर और भक्ति रस को अपने पास लेकर आओ। जैसा जैसा आप करते जाएंगे वैसा वैसा प्रगति के पथ पर, भगवान के धाम पर शीघ्र अतिशीघ्र भगवान से मिलन के लिए पहुंच सकते हैं। विचार कीजिएगा। ओम श्री साईं राम।